అనంతోటి వైష్ణవులకి స్వామి సమాన ఆచార్యులకి కథాయి గోపాలి హర కృష్ణ సదా హార్దిక స్వాగత
పరమేశ్వర సింగ్
హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మే జో కేస్ స్టడీ కా చలన్ హోతా హై ఆర్ ఇట్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ న్యూ అక్సర్ ఖాస్ తౌర్ పర్ లా స్కూల్ మే ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మే జో కేస్ స్టడీ ఇస్తమాల్ కియే జాతే హై ఆర్ లగ్తా హై కి జైసే యే అభి కి జా రహే పర్ యే జో హై ప్రాచీన కాల్ సే జో హై కేస్ స్టడీస్ కా చలన్ రహా హై केस स्टडी का मतलब होता है एक व्यक्तिगत घटना जब किसी दूसरे के ऊपर बीतते हुए देखते हैं तो अकल ठिकाना आ जाती तो वह चीज तो इसे केस स्टडी कहते हैं केस है ना उसका क्या केस हो गया तो ये चित्रकेतु महाराज का जो है प्रश्न कुछ इस प्रकार का ही है आवाज क्लियर नहीं आ रही मैं तो क्लियर बोल रहा हूं माइक से क्लियर नहीं आ रही Base has to be zero. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తో జయముదీరేత్ కష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీరుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ శృణవతాం స్వకథా కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన హృదయంతస్థి అభద్రాణి వినోతి సురిత్సతాం ఓం అజ్ఞానస్తిమిరాంధస్య జ్ఞానంజనాశలాకయా చక్షురుర్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వాపదాంతికం వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగన రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సాగన లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కంతరాధాకాంత నమస్తే తప్త కాంచన కౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభాను సుతదేవి ప్రణమామి హరిప్రియే కాంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శివాషాది గౌరభక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ భ్రష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిని నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే తీసవా శ్లోక్ జో హై అభి యహాన్ పర్ హమ్ ఉస్కా సామూహిక ఉచ్చారణ కరేంగే ఉస్కే బాద్ హమ్ ఔర్ చర్చా కర్నే కా ప్రయాస్ కరేంగే తతః సా సప్త రథ కీజియే మాఫ్ కీజియే దూసరా శ్లోక తతః
కతిపయాయోభిద్యాదేహ మనోగతి జగామా దేవదేవస్య శేషస్య చరణాంతికం తతిపయాయోభిద్యాయేధా మనోగతి జగామాదేవదేవస్య శేషస్యాచరణాంతికం తథా కతిపయాయోభి విద్యాదేహ మనోగతి జగామాదేవదేవస్య శేషస్యాచరణాంతికం తథా కతిపయాయోభి విద్యాయేధ మనోగతి జగామాదేవదేవస్య శేషస్య చరణాంతికం తథా కతిపయాయోభి విద్యాయేధ మనోగతి జగామాదేవదేవస్య శేషస్య చరణాంతికం తథా కతిపయాయోభి విద్యాయేధ మనోగతి జగామదేవదేవస్య శేషస్య చరణాంతికం కతిపయాయోభి విద్యాయేధ మనోగతి దేవదేవస్య శేషస్య చరణాంతికం రామదేవదేవస్య శేషస్య చరణాంతికం. ధన్యవాద్. శబ్దార్థం అర్పించే ద్వారా శబ్దార్థ అనువాద ఏమంటారు జగద్గురు శ్రీల ప్రభాత్ ద్వారా శ్రీల ప్రభాత్ కి తదంతర్ కతిపయ అహోభి కుచి దినో కే భీతర్ విద్యయా మంత్ర సే యేధ మనోగతి మన్ కే పథ కే ప్రకాశిత్ హోనే సే జగామా గయా దేవదేవస్య అన్య దేవతాఓ కే స్వామి శేషస్య భగవాన్ శేష్ కే చరణాంతికం చరణ కమల్ కి శరణ్ మే అనువాద్ సునియ. తదంతర్ కుచి దినో మే మంత్ర కే ప్రభావ సే కుచి దినో మే మంత్ర కే ప్రభావ సే చిత్రకేతు కా మన్ ఆత్మజ్ఞాన్ సే అత్యధిక ప్రకాశిత్ హో గయా ఔర్ ఉన్హోనే అనంత్ దేవ్ కే చరణారవింద్ కి శరణ్ ప్రాప్త్ కీ. తాత్పర్య, भक्त की चरम सिद्धि वैकुंठ के किसी एक लोक में ईश्वर के चरणारविंद में शरण प्राप्ति प्राप्त करना है. भक्ति के कठोर अनुष्ठान से यदि भक्त चाहता है तो उसे सभी भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं, अन्यथा न तो भक्त को ऐश्वर्य की इच्छा रहती है और न परमेश्वर ही ऐश्वर्य प्रदान करते हैं. ईश्वर की भक्ति में संलग्न भक्त का वास्तविक ऐश्वर्य भौतिक न होकर आध्यात्मिक होता है. उदाहरणार्थ, यदि कोई भक्त एक सुंदर तथा मूल्यवान मंदिर का निर्माण में के निर्माण में धन व्यय करता है, जैसे रोहिणी मंदिर, तो यह निर्माण कार्य भौतिक न होकर आध्यात्मिक होता है. निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य मुच्छते। भक्तमन कभी भी मंदिर के भौतिक पक्ष की ओर नहीं जाता। मंदिर के निर्माण में लगने वाली ईंट पत्थर तथा लकड़ी सभी श्री विग्रह के ही समान आध्यात्मिक हैं। जो पत्थर निर्मित होने पर भी पत्थर न होकर स्वयं श्री भगवान होते हैं। जो जो भक्त आध्यात्मिक चेतना की ओर आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों उन्हें भक्ति के तत्व और अधिक स्पष्ट होते जाते हैं। यह ऐश्वर्य भक्त को वैकुंठ धाम के निकट पहुंचने के लिए सहायता के रूप में होते। इस प्रकार महाराज चित्रकेतु विद्याधरपति के रूप में भौतिक ऐश्वर्य में ही बने रहे। भक्ति साधना के द्वारा वे कुछ ही दिनों में सिद्ध होकर भगवान के धाम जाकर शेष अथवा अनंत के चरण कमल की शरण प्राप्त हुए। एक कर्मी का ऐश्वर्य तथा भक्त का ऐश्वर्य एक समान नहीं होते। समीपघ भवेत योग्य यथा तस्य पदम वा प्राप्नु यान नरः। भगवान विष्णु की आराधना से भक्त को मनवांछित फल प्राप्त हो सकता है, किंतु शुद्ध भक्त कभी लाभ की याचना नहीं करते। उल्टे वह निष्काम भाव से भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, जिससे अंततः उसे वैकुंठ धाम भेज दिया जाता है। इस संदर्भ में शिल वीर राघव आचार्य की टीका है, यथेष्ट गतिरित्य अतः यथेष्ट गतिरित्य अर्थः। विष्णु की आराधना से भक्त को मनवांछित प्राप्ति होती है। महाराज चित्रकेतु भगवान के धाम को ही जाना चाहते थे, अतः उन्हें इसमें सफलता प्राप्त हुई। तो बहुत ही अटपटा सा तात्पर्य, पूरा प्रसंग ही बहुत अटपट है। पहला हम जैसे कि बहुत ही कम सुनने को मिलता है कि कोई जो है हफ्ते भर के अंदर भगवत धाम चला गया। श्री राधा राधिकांत भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव भगवान की, तो अक्सर जो है लाइफ टाइम्स कहा जाता है कि कई जन्म बीत जाते हैं तभी भी जो है भगवत धाम नहीं जा सकते। और प्रभुपाद से ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो प्रभुपाद जो अलग अलग वक्त में अलग अलग जवाब देते थे। कई बार बोलते थे इट टेक्स अ मोमेंट, एक क्षण में पहुंच सकते हैं। तो और है भी ऐसे शास्त्र में कई उदाहरण, कटवांग महाराज का उदाहरण आता है, एक मुहूर्त बचा हुआ था उनके पास, चलो उनका काम हो गया। परीक्षित महाराज 7 दिन, ध्रुव महाराज 6 महीने, ये 7-10 दिन में हो गया। 7 रातें, अभी कल का जो श्लोक था उसमें तो श्लोक ही था, सप्त रात्रंते, 7 रातों के अंत में जो है। तो क्या है ऐसा, कौन सा मंत्र दे दिया? और इस मंत्र का नाम भी जो बड़ा रोचक नाम है, महाविद्या। आदमी सुनता सोचते हैं तुम्हारे महाविद्या क्यों नहीं सिखाते, भागवत हम तो पढ़ाते हैं। अरे महाविद्या चल भी रही है, अभी जस्ट महाविद्या खत्म हुई है, अभी 6 श्लोक तो महाविद्या के थे इससे पहले। महाविद्या का मतलब 6 मंत्र ना, श्लोक संख्या 18 से लेकर श्लोक संख्या 25 तक महाविद्या। जैसे महाविद्या होते सब लोग एकदम कान खड़े होते, लोग नोट करने लगते, देखो जरा वो वाले श्लोक, ये महामंत्र सब सुन सुन के जो दिमाग खराब हो गया, नहीं तो जब ही हरकृष्ण पहले महामंत्र करते। ये महाविद्या कुछ अलग चीज है। चित्रकेतु राजा जो है 7 दिन में पहुंच गए, हमारी तो गारंटी भी नहीं है, दीक्षा विक्षा होने के बाद पता नहीं कितने साल लगेंगे। तो पर यहां पर बात महाविद्या की नहीं है, यहां पर जो है चित्रकेतु महाराज के दृढ़ता की बात है, डिटर्मिनेशन की बात है। इसीलिए जो है चित्रकेतु महाराज का पूरा इंस्टेंस ही जो है बिल्कुल उल्टा है। जो एक सामान्य भक्त पर लागू होता है वो चित्रकेतु महाराज पर लागू नहीं होता। इसीलिए एक सामान्य व्यक्ति की भक्त की जो है जीवन गाथा होती है वो चित्रकेतु महाराज की है भी नहीं, बिल्कुल उल्टा है। भगवान साधारण भक्तों के लिए कह रहे हैं भागवतम में दशम स्कंध में यश्याम अनुग्रह नामी, जिसके मैं अनुग्रह करता हूँ अरिष्यदंश में उसका सब छीन लेता हूँ, इनका बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। इस पर अनुग्रह किया तो अभी तो ये इस पृथ्वी के लोग एक जगह राजा थे, कोई विद्याधर लोग दे दिए, बढ़ा दिया इनका ऑपुलेंस। अभी आज के श्लोक में यही तो है कि इनको विद्याधर का जो है लोग जो है इनको मिल गया, कल ही बता दिया था विद्याधरा अधिपत्य, विद्याधर लोग बिल्कुल उल्टा बढ़ा दिया ऑपुलेंस। अच्छा और भी देखते, ध्रुव महाराज के केस में ऑपुलेंस बढ़ा दिया, बलि महाराज के केस में ऑपुलेंस और बढ़ा दिया, कई शास्त्र में बिल्कुल बिल्कुल उल्टा उदाहरण है। बिल्कुल भगवान क्या है कुछ रहे, अब बोलेंगे क्या है इनका, क्या कथनी करनी में इतना अंतर है भगवान के, बोलते हैं कि सब छीन लेता हूं, धारा बढ़ा दिया इसका। तो देखिए ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा बहुत ही भगवान का जो है विशेष कंसिडरेशन है। भगवान क्या कंसिडर करते हैं, पार्शियल है इसका मतलब, तो इनका बढ़ा दिया, इसको तो 7 दिन में दे दिया, उसको 6 महीने में, घूम फिर के बाद वही आ गई। तो ये बहुत ही विचित्र भगवान का जो है वो है। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखिए पढ़ते हैं, आप सुनिए दोबारा सुनिए स्लाइड, हाँ ये देखिए लाइन सुनिए दोबारा। एक कर्मी का ऐश्वर्य तथा भगवान भक्त का ऐश्वर्य एक समान नहीं होता। ऐश्वर्य का मतलब भौतिक, यहां पर ऐश्वर्य से इतना क्लियर नहीं हो रहा, अंग्रेजी में बिल्कुल पढ़ते हैं साफ होगा। कर्मी इज मेटीरियल ओपुलेंस, अब ज्यादा कान में सुनाई देगा, कर्मी इज मेटीरियल ओपुलेंस एंड डिवोट इज मेटीरियल ओपुलेंस आर नॉट ऑन द सेम लेवल। ओपुलेंस की बात नहीं हो रही, बोले नहीं नहीं भक्त का तो आध्यात्मिक ऐश्वर्य, नहीं भक्त का भौतिक ऐश्वर्य, भक्त का भी भौतिक ऐश्वर्य हाँ होता है, कैसा होता है जैसे इसका है चित्रकेतु महाराज का, विद्याधर लोग जैसे ध्रुव महाराज का था, जैसे बलि महाराज का है, भक्त का भौतिक ऐश्वर्य, कर्मी का भौतिक ऐश्वर्य समान नहीं होता। अब कैसे समान नहीं होता, ऐश्वर्य तो ऐश्वर्य ही होता। तो इन हर जो उदाहरण है, चाहे वो ध्रुव महाराज का प्रसंग है, बलि महाराज का प्रसंग है, चित्रकेतु महाराज का प्रसंग है, तो इन सबका जो ऐश्वर्य है, इन सबके भौतिक ऐश्वर्य के बारे में विशेष रूप से भागवत में वर्णन किया गया है, और वो भी साथ साथ वर्णन किया गया कैसे ये अलग है, हर केस में अलग है कर्मी से। क्यों? क्योंकि कर्मी का जो भौतिक ऐश्वर्य प्रभुपाद बताते हैं वो उसके कर्मों के फलस्वरूप होता है, भाग का भौतिक ऐश्वर्य उसके पिछले कर्मों की देन नहीं है। कि एक भक्त है पर भक्त बनने से पहले तो उसने कर्म भी तो किए होंगे, नहीं भाई कर्म के हिसाब से किसी का दुख भी भोगता है, आदमी सुख भी भोगता है, तो अभी वो भक्ति कर रहा है तो सुख दुख तो आ ही नहीं हो, नहीं अब जो वो दुख आ रहे हैं, अब जो सुख आ रहे हैं दोनों, वो उसके पिछले कर्मों की वजह से नहीं। ये तो समझ आ जाता है अक्सर कि जो पिछले दुख अब जो दुख आ रहे हैं भगवान दे रहे हैं ताकि उसको शुद्ध करे, तो कई बार जो है ये सुख भी भगवान देते हैं उसको शुद्ध करने के, और साथ ही साथ शुद्धिकरण का इनाम भी सुख के रूप में आते, दोनों चीज। ये जो है भागवतों में जो है प्रभुपाद अलग अलग जगहों पे जो है ये चीज ध्यान से, और ये इसको अब जैसे एक कर्मी का भौतिक ऐश्वर्य है और भक्त का भौतिक ऐश्वर्य, तो पहचानेंगे कैसे कि दोनों का भौतिक ऐश्वर्य में से कौन सा ऐश्वर्य जो है, क्या इसकी पहचान है कि वो जो ऐश्वर्य है वो उसके पिछले कर्मों से नहीं है, वो भक्ति करने के बाद की देन है। जैसे बलि महाराज, बलि महाराज ने क्या किया, बलि महाराज ने अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया, तो क्या किया बेसिकली दान दे दिया। अब दान देने से क्या मिलता है, पुण्य मिलता है, तो पुण्य उनको क्या मिल गया, हाँ वो सुतल लोक बिलासुर है ना, गलत गलत। प्रभुपाद जो है एकदम खंडन कर रहे हैं इसका, कहते हैं ये सबसे बड़ा सबसे बड़ी मूर्खता है जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान को बगली महाराज ने दान दिया तो उनको जो है बिलासुर मिल गया। अभी कुछ दिन पहले हम नीचे जब कर रहे थे तो यहाँ पे ये जो हमारे यशोदा दामोदर जी का हाथ है ना, अभी भी हाथ में शतकुछ डला हुआ है। देखिए कई बार लोग आते हैं और रात को जो है, उस दिन मैं देख रहा था दोपहर को 1 बजे की बात है, मैं देख रहा था हाथ में 10 का नोट चेप के गया था कोई यशोदा दामोदर को भिखारी की उसमें हैसियत पर उतार दिया, 10 का नोट जो है भगवान के हाथ में घुसा गया। तो ये भगवान को ऐसे दान देने से जो है कोई कोई आगे नहीं बढ़ जाता भक्ति में एटलीस्ट, तो कोई वैसे ही उस दान का कुछ मिल जाएगा आपको। तो बली महाराज का जो ऐश्वर्य बढ़ा वो ऐश्वर्य जो है उस वजह से नहीं बढ़ा, मतलब भगवान को दान देने से निश्चित रूप से जो है लाभान्वित होता है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। परंतु इससे ये समझना है इस दान सिर्फ दान के वजह से, इसका मतलब क्या हुआ, वो कंडीशन लागू हो गई। अब दान कौन दे सकता है, जिसके पास कुछ है तो इसका मैं बात तो वही होगी ना, अमीर आदमी भक्ति कर सकता है, गरीब आदमी भक्ति कर नहीं सकता, इस वजह से लागू नहीं होता। फिर यही पक्षपात लग जाएगा कि देखो जी देखो जो पैसे वाले हैं उनकी तो हर जगह प्रभाव है, भगवान भी बिका हुए समझे ना। तो इसीलिए सब दान देने के वजह से जो है उनको भक्ति उनको वो ऐश्वर्य नहीं मिला और मिलता भी नहीं है ऐसे। तो ये जो भौतिक ऐश्वर्य जो भक्त के पास होता है वो उसके भक्ति की देन है। अब वो मिलता कब है, अच्छा वो उसका दूसरा लक्षण क्या है, पहला पहला तो ये, दूसरा क्या है कि कर्मी का जो भौतिक ऐश्वर्य है उसका नाश हो जाएगा, भक्ति भक्ति के भौतिक ऐश्वर्य का नाश नहीं होगा, यानी कि मरते दम तक हो सकता है उसके पास ऐश्वर्य। अगर कई बार हमारे इस्कॉन में भक्त लोग देख सकते हैं, भक्त लोग कई बार बहुत रईस भी होते हैं और उस रईस अवस्था में जो है प्राण भी त्याग दे, इसका मतलब समझिए उसकी जो रियासत थी वो इस वजह से थी, भगवान की देन थी, आखिरी दिन तक भोग के जाए भगवान चाहते थे। तो ये भी समझना चाहिए, इससे जो है जलना जलने की जलने से कुछ मिलने वाला भी नहीं है वैसे तो। तो ये भगवान का सिस्टम है, भगवान हाँ उसके लिए रखा हुआ है कि हाँ मैं चाहता हूं कि आखिरी दिन तक तू ऐश करे और उस ऐश करने के बाद तू मेरे पास भी आएगा। ये भी है दोनों चीजें, दोनों चीजें, और इन सारे उदाहरणों में यही चीज है, एक चीज कॉमन है चित्र के तुम्हारा केस में भी ये कॉमन है। वो भगवान की भक्ति करना शुरू की थी उन्होंने और इसके एग्जाम्पल है भौतिक ऐश्वर्य। जब भक्त के पास जो भौतिक ऐश्वर्य आता है जो भक्ति की देन है और उसका उसका प्रमाण क्या, बुद्ध महाराज के जीवन में भी देख सकते हैं, उनको कुबेर ने देने की कोशिश की कि लो भैया क्या चाहिए आप, जब वो यक्षपुरी में जो है अलकापुरी में उन्होंने जो हमला किया उसके बाद उस संदर्भ में क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कुबेर जो आंची में धन दे सकते हैं उनसे हाथ जोड़ के बोला कि भैया मेरे को ना आप ये प्रार्थना, मैं प्रार्थना करता हूं आपसे मेरे को आशीर्वाद दो कि मेरी भक्ति चलती रहे। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो पैसा है ना ये मेरे से डिगाना दे, आप जिसको ये पैसा वैसा देते हो उसका तो दिमाग खराब हो जाता है उसका, उसके बाद तो मैं आप ही मेरे को आशीर्वाद दो, आप ही से आएगा ये पैसा आएगा तो आप ही मेरे को आशीर्वाद दो कि जो है मेरा दिमाग खराब ना हो, समझ रहे बात को। तो भौतिक ऐश्वर्य उनको मिल जाता उनके कर्म के फल के स्वरूप, उन्होंने वो नहीं ग्रहण किया उनका, अब क्यों देना चाह रहे थे हमको, आपको क्यों नहीं देने आते कुबेर महाराज नीचे उतर के। कुबेर नाम को गुटखा मिल सकता है पर पैसे नहीं मिलेंगे हाँ समझ रहे हैं, तो वो इतनी आसान चीज नहीं है। और क्यों, अब वो देने आ रहे हैं, देने देने के लिए तैयार है, दे रहे हैं, वो ले नहीं रहे। क्या मतलब है उसका कि जो कर्म के फल स्वरूप जो उसको मिलना चाहिए भक्त जो है उसको भोगना नहीं चाहता, सुख को दुख को भोगना चाहता है। जब भी कुंती महारानी बोल रही कि आप जो है दुख आने दो क्योंकि इस दुख को मैं इस्तेमाल कर लूंगी, ये भगवान के स्मरण में लग जाएगा मेरे, ये करवा देगा। और वह आता वो जो सुख है वो ध्रुव महाराज कह रहे अभी रहन दीजिए ये मुझे मरवा देगा, तो उसके बावजूद जो है उनको अब एक सुख आ रहा है तो वो भगवान की देन। उसी तरीके से चित्रों में कहते महाराज उनको नारद मुनि ने बोला कि आप ये महाविद्यास का जब करिए बस खत्म। अब ये भी नहीं बोला उनको कि 7 दिन तक जब करने से काम हो जाएगा तो वो कर्मकांड हो जाता। उनको मिल गया उनके डिटर्मिनेशन के फलस्वरूप, और ये डिटर्मिनेशन थी इसलिए उनको भगवान ने बेसिकली भगवान ऐश्वर्य की कसौटी क्या है कि भगवान जो है भक्ति करते हुए बहुत ऐश्वर्य किसको देते हैं? उसको देते हैं जिसके अंदर बहुत दृढ़ता है। यानी कि अगर आप भक्ति में ऐश्वर्य चाहते हैं तो पहले दृढ़ता बढ़ाइए, ऐश्वर्य बढ़ाने के जुगाड़ में देखिए। ज्यादा दृढ़ता वाले व्यक्ति को भगवान भक्ति के साथ साथ ऐश्वर्य भी देते, कम दृढ़ता वाले भक्त को भगवान ऐश्वर्य नहीं देते बल्कि छीन लेते। ये कसौटी है। जिस जिसका एग्जाम्पल है त्रिचेत्र का, तो महाराज का उदाहरण देख लीजिए, इनकी दृढ़ता देख लीजिए। दृढ़ता का सबूत क्या है? 7 दिन के अंदर जो है 7 रातों के अंदर कर दिया जो करना था उन्होंने। ध्रुव महाराज दृढ़ता का सबूत क्या है? 6 महीने में जो करना था कर दिया। जो भी उदाहरण है ये सारे देखिए। बलि महाराज एक मौका मिला, एक बार में खत्म, एक मीटिंग में ही कर दिया जो करना था, एक दिन में ही चंद मोहलत मिली थी उनको, बस उसी में कर दिया जो करना था, आर पार कर दिया सर। तो ये है डिटर्मिनेशन। इस तरीके के एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिटर्मिनेशन वाले व्यक्ति को ऐश्वर्य मिलता है, उल्टा है। क्योंकि भगवान को मालूम है ऐसा व्यक्ति मेरा ऐश्वर्य भी बचा लेगा, लगा लेगा भगवान अपनी से, मेरे सम, अपनी मेरी सभा में लगवा भी देगा उसको, इसको कुछ नहीं होने वाला इस ऐश्वर्य से। तो यानी कि एक तरह से सोचते माया पचाने की हिम्मत मतलब डिटर्मिनेशन से ही आती है, और पचाने का मतलब अपने लिए नहीं भगवान के लिए। तो ये इसका सारा टेक्निकली, क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? भौतिक ऐश्वर्य का मतलब 3 चीजें, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, बस ये 3 चीजें होती। तो अब तो ये अब कैसे पहचानेंगे कि ऐश्वर्य जो है भगवान के द्वारा दी गई कि माया के द्वारा दी गई है? प्रभा सातवें स्कंद में बता रहे हैं अगर उस ऐश्वर्य से वो भक्त रिझ गया तो माया के द्वारा दी गई है। समझ आई? नहीं समझ आई? अगर वो ऐश्वर्य देने से वो भक्त जो है भगवान से रास्ते से भटक गया, गिर गया, तो माया के द्वारा दिया गया था और फंस गया उसमें। अगर वो ऐश्वर्य देने के बाद वो भगवान के रास्ते से डिगा नहीं है तो भगवान का प्रसाद था, इसलिए तो डिगा। ऐसा कैसे हो सकता है भगवान का प्रसाद खाके आदमी माया में गिर जाए? हाँ समझ रहे बात को? तो वो पहचान है, ये अलग अलग पहचान बताया। एक पहचान बताया कि वो खत्म नहीं होगा, दूसरा खत्म हो जाएगा, वो माया का था। और दूसरा क्या है? एक तो ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा तो वो माया का है, वो ऐश्वर्य लेके बंदा भी खत्म हो जाएगा तो वो भी माया का है। दोनों, बंदा भी खत्म और ऐश्वर्य भी खत्म, अल्टीमेटली दोनों चीजें। तो अगर भक्त परिपक्व नहीं है तो प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान हमेशा उसका ऐश्वर्य छीनेंगे, हमेशा, मतलब ऑलवेज टेक अवे इज मेट्रोपोलिस। प्रभुपाद बता दें 4वें स्कंद के 30वें अध्याय के 19वें श्लोक के तात्पर्य में ऑलवेज, अगर भक्त मैच्योर नहीं है, इसका मतलब कसौटी ये है कि अगर ऐश्वर्य भी बचाना चाहते हैं मैच्योर पहले बन जाए जी, इससे पहले छीन लगूंगा नहीं तो। सीधी बात, इसका यही मतलब है। जो भी थोड़ा बहुत है, वैसे तो ज्यादा है नहीं, पर जो भी थोड़ा बहुत है वो भी छीन लेंगे अगर मैच्योर नहीं बने भक्ति में, परिपक्व नहीं बने। सिर्फ गर्दन हिला से नहीं चलेगा, छिन जाएगा जब पता चलेगा। इससे पहले मैच्योर जितनी जल्दी हो सकता बन जाइए। मैच्योरिटी किसमें? इन भक्ति, भक्ति में परिपक्व, जितनी जल्दी बनेंगे तो हमारे सेहत के लिए अच्छा, तो वो ऐश्वर्य छिनेगा नहीं, नहीं तो छिन जाएगा। तो आइए आगे, आगे और अब भगवान देते क्यों हैं? अब ये तो हो गया कैसे पहचानेंगे, अब देते ही क्यों हैं? अब देते इसलिए हैं कि भगवान जो है ये जो भौतिक ऐश्वर्य है ये भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, ये आध्यात्मिक एक अवसर है। भौतिक ऐश्वर्य जिसको हम ऐश्वर्य देखते हैं वो उस व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक अवसर के रूप में आता है। उसको एक आध्यात्मिक अवसर मिला है, यानी कि कई सारी सहूलियतें मिली हैं जिससे वो भगवान की एक विशेष सेवा कर सके। हम इसको भौतिक ऐश्वर्य का नाम दे सकते हैं, पर वो उसको आध्यात्मिक अवसर के रूप में देखते हैं, मौके के रूप में देखते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि उसको कोई भी सेवा, उसको कोई भी ऐसा पैसा मिला, जैसे यहां पर जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए ना, तो कैसे देखें, मंदिर वाला भक्त का मन कभी भी मंदिर के भौतिक पक्ष की ओर नहीं जाता, ये बात समझ रहे हैं। भक्त का मन कभी मंदिर के भौतिक पक्ष की ओर नहीं जाता। उसका क्या मतलब है भौतिक पक्ष का? मतलब मोटा मोटा एकदम, अगर समझे तो मोटे बुद्धि वाले व्यक्ति को समझाना हो तो क्या है भौतिक पक्ष? ईंट पत्थर मंदिर का ये वो, ये है भौतिक पक्ष, ये है मोटी बुद्धि के लिए। और थोड़ा सूक्ष्म जाए, सूक्ष्म जाने का मतलब भौतिक पक्ष का क्या मतलब होता है? मंदिर का भौतिक पक्ष क्या होता है? मंदिर का भौतिक पक्ष मतलब मंदिर में लोग रहने वाले, उनका भौतिक पक्ष हो सकता है। क्या भौतिक पक्ष है उसका? ये सटल चीज है कि हाँ मंदिर है तो मंदिर का मतलब मंदिर के अंदर जो है प्रभारी भी होंगे। मंदिर कैसे चलता होगा? ऐसे थोड़ी है सुबह आते हैं अपने आप दर्शन खुल जाते हैं, रात को आते हैं अपने आप बंद हो जाते हैं, सफाई अपने आप हो जाती है, प्रसाद अपने आप बन जाता है और मंदिर अपने आप सज जाता है, अपने आप सजावट उतर भी जाती है ना। हवा का झोंका आया उतर गया, हवा का झोंका आया चढ़ गया। ये मंदिर का भौतिक पक्ष हो सकता है। इसका मतलब इसके पीछे जो है कुछ चीजें, कोई लोग होते हैं, कुछ इसका कोई जो है मैनेजमेंट होता है कुछ, ये भौतिक पक्ष है। तो पर भाग जो है इसके प्रति ज्यादा आकर्षित नहीं होता, यानी कि इसको लेके जो है ज्यादा सिर नहीं मारता अपना। क्यों? क्योंकि ये भौतिक पक्ष जो है, ये भौतिक पक्ष एक्चुअली जैसे बता रहे आध्यात्मिक अवसर। ये नौसिखिया भक्त जब इन चीजों की तरफ देखता है तो वो इसको भौतिक पक्ष की तरफ देख के खुद ही भौतिक पक्ष पर आ जाता है। तो इसके लिए जो है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की आवश्यकता है, आध्यात्मिक जीवन में जो है उसको परिपक्वता चाहिए। तो और वो परिपक्वता कैसे मिलेगी? अब बात तो वही है घूम फिर के, जैसे ये चित्रकेतु महाराज के बोले, दृढ़ता, दृढ़ता हमारे हाथ में, दृढ़ता आसमान से नहीं टपकेगी। दृढ़ता जो है वो जीव का जो है की जिम्मेदारी, जीव की जिम्मेदारी, ऐसा समझ लीजिए। That ball is in the court of the jiva, उस वक्त कि वो जो है कितनी दृढ़ता दिखा सकता है या दिखाना चाहता है, एटलीस्ट जितनी है उतनी तो दिखाए। तो ये लक्षण है उस दृढ़ता के एवज जो है उसको वो आध्यात्मिक परिपक्वता हासिल होगी, जिससे जो है वो भगवान के ऐश्वर्य को भी पचास दिया गया ऐश्वर्य को बचा सकते हैं, यानी उनकी सेवा में लगा सकते। तो उसको ये मंदिर का भी भौतिक पक्ष दिखाई नहीं देगा, मतलब दिखाई देगा इसका मतलब नहीं अंधा हो जाएगा, वो उसको असर नहीं करेगा। कई बार ये सोचते हैं उसको दिखाई नहीं देगा या उसको जो है नहीं होगा ऐसे, मतलब उसका असर उसको नहीं होगा स्पेसिफिकली। दिखाई सब देगा उसको, उसको ज्यादा दिखाई देगा, जिस बाहर वालों को जितना दिखाई देता है उससे ज्यादा दिखाई देगा उसको। पर बाहर वालों को जो कम दिखने में जितना ज्यादा असर हो जाता है उसको ज्यादा दिखने में कोई असर नहीं होगा, ये फर्क है। समझे? ये फर्क है, ऐसा प्रभुपाद यहां बता रहे। तो ये अब उसको दिया किस लिए जा रहे हैं? ताकि भगवान चाहते हैं, जब भगवान एक भक्त का डिटर्मिनेशन की उसके उसके दृढ़ता की परीक्षा ले लेते हैं और उसमें खड़ा होता जाता है, अब बिल्कुल उल्टा करते हैं भगवान। दृढ़ता की परीक्षा का मतलब क्या है? कि बहुत कठोरता से जो है आपने अपनी दृढ़ता दिखानी पड़ेगी माया के विरुद्ध। पर एक बार आप निकल गए उससे, अब भगवान जो है ऐसे भक्त की भक्ति बहुत आसान कर देते हैं। कहते तेरे को मैं चाहता हूं कि तू बहुत आराम से भक्ति करे, आसानी से और आराम से। तो आप बता रहे हैं इजीली एंड ओपुलेंटली, ऐसे व्यक्ति को भगवान चाहते हैं कि बहुत आसानी से और बहुत वैभव के साथ वो भक्ति करे, क्योंकि उसकी वो परीक्षा ले चुके होते हैं, जो देखना था देख लिया एक बार, ठीक है अब पता लग गया ये नहीं करने वाला नीचे। तो भगवान के जजमेंट में गड़बड़ी नहीं होती कि एक बार देख लिया दोबारा गिर गया तो फिर क्या होगा। ना कई बार ऐसा लग सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो भगवान एक ही बार एग्जाम लेते जो लेते हैं, बार बार सेमेस्टर एग्जाम नहीं, बार छह महीने बाद ना परेशान, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा, एक बार
सौ सुनार की एक लोहार की, एक एग्जाम लेते। माया जो है बार बार परीक्षा लेती, बार 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 जो है आपको ना टिकल करती रहती। भगवान एक बार, वैसे एक बार परीक्षा लेते, चलो आर्या पार सीधा, ऐसा नहीं है। तो और वो परीक्षा क्या होती है, प्रभुपाद बता रहे हैं सातवें स्कंद में कि उसको दो चीजें देते हैं भगवान, दोनों चीजें दो, उस परीक्षा के दो पार्ट होते हैं, उसमें दो क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि एक प्रभुपाद बता रहे हैं, अंग्रेजी में बता रहा हूं, ऑकवर्ड पोजिशन, यानी कि एक असमंजस की स्थिति, ऐसे स्थिति कुछ डाल के देखते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। दूसरा मेटीरियल ओपुलेंस, दूसरा जो है भौतिक ऐश्वर्य देख के, दोनों चीजें देख के देखते हैं अलग अलग, दोनों अलग अलग चीजें। एक उनके क्वेश्चन पेपर में दो चीजें होती हैं। अब प्रभुपाद बता रहे हैं ये दोनों चीजों में वो क्या करने में कामयाब, उसका 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 क्या भगवान क्या देखते हैं कि क्या करने में कामयाब होना चाहिए। ही शुड बी द डिवोटी, प्रभुपाद बता रहे हैं, नोज हाउ टू मैनेज एक्सपर्टली, बस खत्म। ये देखते हैं एक्सपर्ट वे ऑफ मटीरियल लाइफ, बस टू मैनेज। प्रभुपाद मैं कोट पढ़ रहा हूं, टू मैनेज एन ऑकवर्ड पोजिशन ऑन ए मटीरियल सिचुएशन इज द एक्सपर्ट वे ऑफ मटीरियल लाइफ। भौतिक जीवन में बहुत ही दक्षता के साथ उसने ये एक असमंजस की स्थिति और एक बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति, दोनों चीजों को संभाल लिया उसने, मैनेज कर लिया उसने, बस ये देख लें एक बार, कर लिया उसने, बस ठीक है हो गया। दो प्रकार की मुक्तियां जो जिस तरीके से मुक्ति मिलती है, वे वी गेट लिबरेशन, और वो दे आर फॉर्म्स ऑफ लिबरेशन, वी आर वे टू गेट लिबरेशन। तो दो प्रकार से मुक्तियां मिलती हैं, एक होती है जीवन मुक्ति, दूसरी होती है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति जैसे कि भागवत गीता में आठवें अध्याय में जो है जो चर्चा आती है, अंत प्रकार अंधकाले चमामे व स्मरण मुक्ता कलेवरा, स्मरण मुक्तवा कलेवरा, स्मरण करता हुआ जो है उसने अपना कलेवर छोड़ा, इस व्यक्ति को विदेह मुक्ति कहते हैं। यानी कि उसकी मुक्ति शरीर छोड़ने के साथ मिलती है उसको, लास्ट मिनट में मिलता है उसको, गेम जो है ओवर होता है शरीर छोड़ने के साथ। और दूसरा जो है यहां जो प्रभुपाद बता रहे हैं ये होता है कि शरीर छोड़ने से पहले शरीर में रहते हुए, इसे कहते हैं जीवन मुक्ति। ये दूसरा सिस्टम, ये भक्त कर सकते हैं। और वो जो अंतकाले चमामे व स्मरण मुक्त कले, वो भी भक्त कर सकते हैं, पर भक्त के अलावा जो मिश्रित भक्त होते हैं वो भी, जैसे कि जिनको मान लीजिए ब्रह्म ज्योति मिलती है, इसीलिए वो पांच प्रकार की मुक्ति होती है। पांचवी प्रकार की मुक्ति होती है सायुजी मुक्ति, वो सिर्फ उनको मिलती है, और वो इस कैटेगरी में आते हैं, वो इस कैटेगरी में कभी नहीं आते। जीवन मुक्त व्यक्ति कभी कभी जो है वो ब्रह्म ज्योति में नहीं जाएगा। शरीर छोड़ते वक्त जो है उसका उस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग है तो वो ब्रह्म ज्योति में भी जा सकता है, अदरवाइज जो है बाकी वो ऐसे ही जाएंगे, वो भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। और ये व्यक्ति तो निश्चित ही है, अभी हो चुका है सबको, इसका वीजा पासपोर्ट सब तैयार लग चुका है, टिकट लेने ही जाना। और ये जीवन मुक्ति, ये जीवन मुक्ति का मतलब है कि जिसने भगवान का ये वाला टेस्ट जो भी पार कर लिया अभी इस टाइम, ये दो कंडीशन, दोनों कंडीशन देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बहुत दुख देते हैं, दुख ही देते रहते हैं, और दुख देते हैं, फिर और दुख देते हैं, फिर हो गया नहीं नहीं पूछ भगवान भगवान नहीं नहीं भगवान नहीं नहीं और दुख देते नहीं नहीं भगवान नहीं बस कर अच्छा ठीक है चलो कदम। अरे वो भगवान के दिए दुख नहीं थे, आपके कर्म थे। हाँ, भक्ति में कई बार जो है भक्त लोग सोचते हैं मैं भक्ति में आ गया, मेरा शरीर खराब हो रहा है, ओहो पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा मेरे पैसे गुम गए, मोबाइल चोरी हो गया, ऐसा हो गया, ओ भगवान के दिए दुख, आपकी बेवकूफी है, आपके का कर्म है, भुगतो उसको, पैसे गुम गए आपकी बेवकूफी है, शरीर खराब है, ज्यादा खा लिया था, जाओ जाके भले युक्तार से गो, बड़े है भगवान से दुख लेने वाले। और दूसरा होता है जब भगवान का दिया गया दुख होता है और भगवान का दिया गया, उसके बाद भगवान का दिया गया सुख भी होता है, दोनों चीजें तो एक अलग सिचुएशन है, ये अपने कर्म के दुख होते, भगवान का दिया हुआ दुख नहीं होता।
तो ये वो भगवान का जब टेस्ट कर रहे होते हैं, भगवान का दिया गया दुख और भगवान का दिया सुख दोनों देते हैं उसको। सर दुख दुख में पास हो गया, सुख में फेल हो गया, तो वहां तो यही है अनंत ब्रह्म सौख्यम तुम अनंतम, वहां तो खत्म हो जाएगा उसका खेल, तब क्या होगा। हाँ समझ रहे बात, तो इसीलिए जो है सुख भी देते हैं, दोनों चीज देखे देखते हैं, एक बार देख लू क्या है। हाँ पास हो गया, चलो अभी पास है तो अभी हो गया तेरा जीवन मुक्ति, चलते रहो तू शरीर जब तेरा मन करे तो छोड़ियो, तेरे को छोड़ दे छोड़ियो, वरना मत छोड़ियो साथ ले चलियो, चल और बता और क्या चाहिए। धुर महाराज के तेरा शरीर चल जाएगा, ये ले चल, युधिष्ठिर महाराज तेरा यही शरीर चल। उनका काम पहले ही हो चुका था, समझ आ रही है बात ये है। और यही वजह हम समाधि देते हैं, जलाते नहीं वैष्णव के शरीर को, क्योंकि वो अब मुक्त शरीर है, वो स्पिरिचुअल है, भौतिक चीजों की जला देनी चाहिए उसको, क्योंकि वो नष्ट हो जाएगा। आध्यात्मिक चीजों नष्ट नहीं होगा, इसलिए उसको प्रिजर्व करते रहे। समाधि का मतलब क्या, प्रिजर्वेशन, जैसे इजिप्ट में होता है ना, मम्मी बना के रखते हैं, है ना, तो इसमें क्या है, तो समाधि के अंदर प्रिजर्व होता है, ठीक है। समाधि डालते उसमें क्या होता है, नमक वगैरह डालते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि बॉडी जो है वो पेरिश ना हो जल्दी। नमक कब डालते हैं, अचार में नमक कब डालते हैं, हाँ ताकि चलता रहे। तो बस, तो अब आदमी जो है उसको दफनाया जा रहा है, नमक डालने की क्या जरूरत है, कॉमन सेंस ऐसे डाला जाता है, इसका मतलब इज प्रिजर्व, बिकॉज इट इज प्रिजर्वेबल थे। हाँ समझ रहे, आप साउथ इंडिया जाएंगे रामानुजाचार्य का जो समाधि देख सकते हैं, जमीन के ऊपर नीचे नहीं, तो ये अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द रीजन। लाइक जो वैष्णव, जो शुद्ध वैष्णव होते, प्योर वैष्णव होते, सिद्ध वैष्णव होते हैं हो चुका, तो उनको समाधि दी जाती है, क्योंकि नाउ इट्स प्योर, दिव्य जीवन मुक्त है, वो निकल चुका है बंदा। तो ये अंडरस्टैंडिंग, ऑल दो ठीक है, जो विधि विधेय मुक्ति भी है उसको शरीर छोड़ते वक्त जो है प्योर माना जाएगा, पर खास तौर पर जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त व्यक्ति का ये कि वो जो है ये दोनों सिचुएशन क्रॉस कर गया, तो जैसे ये चित्र के तुम्हारे से क्रॉस करके विद्याधर लोक मिल गया, तो पागल नहीं हो गए विद्याधर लोक में जाके, और इसीलिए जब मिल गया और वो ड्यू कोर्स में मिला, सात दिन के अंदर ही मिल गया, पहले नहीं सातवें दिन मिला, उससे पहले ही मिल गया, और चलता रहा उनकी साधना चलती रही, तो बस सात आठ दिन दस दिन के अंदर चलो खत्म, क्योंकि यहां पर जैसे होता है, और मतलब मिलने के बाद कि चरण को शरण को प्राप्त किया, मतलब उसके बाद अंग्रेजी में इस टाइप से लिखा हुआ था, विद इन अ फ्यू देयर आफ्टर, सात दिन में उनको क्या हुआ, सात दिन में तो उनको ये विद्याधर का मिल गया और ज्ञान और बढ़ने लगे वो आध्यात्मिक में, और उसके बाद कुछ दिनों में विद इन अ वेरी फ्यू डेज, तो ये स्टेप्स तो कुछ ही दिनों में हो गए। तो ये सिस्टम उनकी दृढ़ता के एवज में जो है भगवान ने उनको इस तरीके से, क्यों, क्योंकि अब अलग अलग लोगों का देखिए, अब वही सेम चीज है, अब बलि महाराज ने जब अब उन्होंने अच्छा, उनको भौतिक ऐश्वर्य भी था उनके पास, भक्त वाला भौतिक ऐश्वर्य नहीं, उनके कर्म का भौतिक ऐश्वर्य था उनके पास, कौन सा था, जिन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से कमाई थी, कैसे, अपनी गर्दन कटवा के एक बार, क्या हुआ था बलि महाराज के साथ जब उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई की थी, तो खत्म हो गया था उनका खेल एक बार, तो शुक्राचार्य ने जिंदा किया था उनको, तो मौत तो आ गई थी उनको एक बार, मतलब उन्होंने जान पे खेल के जो है वो स्वर्ग हासिल किया था, और वो जो जान पे खेल के हासिल किया था चुटकियों में दे दिया भगवान को, वो दान के वजह से नहीं, उनके अंदर ये भक्ति थी इस वजह से दे पाए वो, ऐसा हो सकता है कोई अपने खून पसीने की कमाई दो दे, अपनी गर्दन कटवा के, वो भी दिमाग खराब है क्या आदमी का, और वही जब बता रहा है सामने वाला, और उसी का गुरु बता रहा है, अरे मत दियो सब छून लेगा तेरा, कहीं का नहीं छोड़ेगा तेरा, उसके अंदर इतनी भक्ति थी इसलिए, आप समझ रहे, तो ये प्रूफ है, जब वो मौका आया तो उन्होंने जो है भगवान के सामने जो अपनी भक्ति वो उस परीक्षा को उन्होंने पास किया, भगवान ने यही देखा उस टाइम, देखो जरा इसको दुख देके लेता है नहीं लेता, ले लिया। तो ये इसीलिए, तो अब इसीलिए जो उनको अब जो बलि महाराज जो सुतल लोके स्वामी है वो उनका आध्यात्मिक वैभव है, वो जो भौतिक ऐश्वर्य है वो उनका आध्यात्मिक अवसर है, ऐसे इसको ले।
तो यही इसीलिए भक्ति में दो चीजें होती, जिसको हम वैराग्य कहते हैं, जो भक्ति के टर्मिनोलॉजी, जिसको युक्त वैराग्य को ही वैराग्य कहा जाता है, नहीं तो जिसको वैराग्य कहा जाता है, जो हम आम जबान में समझते हैं, वो त्याग होता है। तो वो भक्ति के मार्ग में जो है इतने कारगर साबित नहीं होते। चलिए, भक्ति सदा सरस्वती ठाकुर ने खास तौर पर बहुत जोर दिया युक्त वैराग्य, ये सीखिए, ये इतना आसान नहीं है सीखना। सामान छोड़ देने को तो है, वैराग्य नहीं कहते, उसको त्याग कहते हैं। पल्ला छुड़ाना, पल्ले छुड़ाने को जो भक्ति नहीं कहते, उसको इसको सीखना पड़ता है। ये आर्ट है, अपने हमें कला है, इसको सीखना पड़ता है। और युक्त वैराग्य हर किसी के लिए, गृहस्थ के लिए भी है, सन्यासी के लिए भी। भक्ति हर कोई कर रहा है ना, तो अब आप बोलोगे वैराग्य, और सन्यासी क्या वैराग्य करेगा, उसका तो छोड़ दिया, और क्या युक्त क्या करेगा। अब चैलेंज क्या है, सन्यासी को युक्त क्या करेगा, उसके मतलब कुछ है नहीं युक्त करने के लिए। और भैया गृहस्थ जो है वो क्या क्या त्याग करेगा, सब कुछ है, तब क्या करेगा, तो रहेगा जाएगा उसके पास। तो सन्यासी का जो है चैलेंज युक्त करना है, और गृहस्थ का चैलेंज त्याग करना है, वैराग्य करना है। वो जरूरत से ज्यादा युक्त है, उसको वैराग्य समझना पड़ेगा। और जो सन्यासी जो है, हो सकता है ज्यादा वैराग्य की तरफ जा रहा है, युक्त समझना पड़ेगा कि जो उसके पास है वो क्या लगा है। सन्यासी ने तो सोचेगा तो मैं तो त्याग आया, अब क्या है। और त्याग तो है, शरीर थोड़ी ना त्याग है, उसको लगाओ उसको भगवान की सेवा में, और इस शरीर का और इसको जो और भी चीज जो चीजें मिल रही है उसको लगाओ भगवान की सेवा में, ये आपका युक्त साइड है। और जो गृहस्थ है उसका तो वही है कि उसका युक्त है, भैया इसको थोड़ा दो, थोड़ा भगवान की सेवा में इसको निकालो, थोड़ा 25-50% जो है भगवान की सेवा में निकालो, तो ये उसका वो साइड है। तो इस टाइप से वो अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज लाइक जयप्रदा महाराज बताते हैं कि बहुत सटल होता है ये जो त्याग वाला जो सिस्टम होता है, ये फल्गु वैराग्य, शुष्क वैराग्य जो होता है, ये मोस्ट सटल फॉर्म ऑफ माया होती है भक्ति के अंदर। जब आदमी भक्ति कर रहा होता है, वैराग्य माया देखती है कि कोई बात नहीं, पैसे से नहीं ले जाएगा, कोई बात नहीं, वैराग्य से ही हिला देते हैं इसको, क्या दिक्कत। सेम चीज, वैराग्य जितनी भी चीजें हैं ये औजार हैं, भक्ति हाथ में भी और माया के हाथ में भी। बस ये देखना पड़ेगा कौन पहले इस्तेमाल करेगा, जो पहले इस्तेमाल करेगा वो जीत जाएगा। आपको दिया गया ऐश्वर्य, आपने भगवान के लिए पहले इस्तेमाल कर लिया, आप जीत गए। माया ने पहले इस्तेमाल कर दिया, आपका खेल खत्म। आपके पास जो है बहुत, आपके पास त्याग की भावना है, आप बहुत त्याग कर सकते हैं, निर्जन भजन कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं जरूरत से ज्यादा, सो सब ठीक है, भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कला को कर लीजिए, नहीं तो माया कर लेगी इस्तेमाल और आपका खेल इसी से खत्म हो जाएगा। हाँ, समझ रहे। तो ये चीज, तो ये माया का सिस्टम है। जो भी ये क्वालिटीज होती हैं, ये माया और भगवान के भक्त दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखना पड़ेगा कौन पहले इस्तेमाल करेगा और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करेगा, उसी मात्रा में जो उसको सफलता या विफलता हासिल होगी। तो यही यहां पर लाइक भक्ति सरस्वती ठाकुर जो है वो दुष्ट मन किशोर वैष्णव के जो भजन है उसमें जो है ये बारीकी बता रहे हैं। और फिर जयप्रदा महाराज ने उसमें तात्पर्य दिया, तो उसमें वो और खुलासा कर रहे हैं इस चीज का, क्योंकि बता रहे हैं कि अगर किसी को ये फल्गु वैरागी की बीमारी लग गई, भक्ति सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं, उसके लिए कम से कम जिस जन्म में बीमारी लगी हो उस जन्म में तो एटलीस्ट ऑलमोस्ट नामुमकिन है दोबारा ठीक से भक्ति करना, जिसको ये बीमारी लग गई है एक बार, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बता रहे हैं। जिसको फल्गु बीमारी, ये जो दिखावे वाला जो भक्ति है और दिखावे वाली तपस्या है, दिखावे वाला वैराग्य है, इसकी बीमारी जिसको लग गई है इस शरीर के रहते रहते तो उसका बड़ा मुश्किल है। अब अगले शरीर में पिछले जन्म की भक्ति का क्रेडिट मिलकर कुछ कर ले तो कर ले, अलग बात है। तो इसलिए जो है बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है मोस्ट सटल फॉर्म ऑफ माया है, और जितनी माया सटल होती है उतनी स्ट्रांग होती है, जितना ग्रॉस होती है माया को डिफीट करना उतना वीक है। तो ये इसीलिए इसी वजह से इस ये बीमारी ना लगे, इसीलिए जो है भक्ति सरस्वती ठाकुर बहुत ज्यादा जोर देते हैं युक्त वैराग्य पे, सीखो इसको बार बार। और जितने भी रूप गोस्वामी के बाद जितने भी आचार्य रहे हैं, युक्त वैराग्य पर बहुत जोर दिया, जगन्नाथ पंडित बहुत जोर दिया है, भक्ति विनोद ठाकुर बहुत जोर दिया है, सनातन गोस्वामी ने बहुत जोर दिया है, बहुत जोर दिया, सब ने युक्त वैराग्य सिद्धांत पर बहुत जोर दिया, बहुत जोर दिया इसको, बहुत इससे इसको लगाई। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासी थे और युक्त वैराग्य दिखाया, इसी वजह से
बहुत जोर देगी, इस टेक्निक को नहीं सीखे तो वैराग्य मार देगी आपको, वैराग्य नहीं मारेगी तो ओ, तो ओ, तो ये वैभव तो मारने के लिए बैठगी है, ऐसा नहीं आप वैरागी नहीं बनोगे तो बच जाओगे तो आपको आपको वैभव मार देगी, वैभव नहीं, वैभव से बच के वैराग में कूद गया होगे तो वैराग्य मार देगा, कोई चारा नहीं युक्त वैराग्य सीखने के अलावा। निर्बंधे कृष्ण संबंधे, जो भी है भगवान के संबंध में इस्तेमाल करना सीखिए, सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो गरीबी मार देगी नहीं तो अमीरी मार देगी। और बिल्कुल जमीनी तौर के भाषा में अगर समझना चाहते हैं, जमीन ये जो जमान है देख सकते हैं हमारे न्यू बिल्डिंग के सामने, मेरे ख्याल से दिल्ली की सबसे बड़ी झुग्गी कॉलोनी है, तो गरीबी मार रही है उनको तो भक्ति नहीं है उनके पास, ऐसा नहीं तो गरीब आदमी भक्ति कर लेते सारे आ जाते मंदिर, कितने आते। और हमारा ये मंदिर कहां पे है, ये पंजाबी भाग है, पूरे दिल्ली का सबसे एलीट एरिया, कितने आते, अमीरी ने मार दिए, उसको गरीबी ने मार दिया, उसको अमीरी ने मार दिया, बिल्कुल वो हमारे ऊपर भी लागू होती। अगर भगवान की सेवा में ऐश्वर्य को नहीं लगाया तो या तो गरीबी मार देगी या अमीरी मार देगी। गरीब है तो उसके पास नहीं है तो त्याग है उसके पास, तो त्याग लगा ले भगवान की सेवा में बच जाएगा, ये इसके पास पैसा है लगा ले भगवान की सेवा में वो बच जाए, बात लगाने की है। भगवान ने किसी को भी कंगाल नहीं छोड़ा, किसी को कुछ ना कुछ दिया, तो ये टेक्निक है। तो यहां पर चित्र तो महाराज के संदर्भ में ये टेक्निक, तो वो जब थे भाई अशोक उनका लड़का मारा गया, उसके बाद उन्होंने सुना एक बार ठीक है लग गए, उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे। अब 26वें श्लोक के बाद अभी तो ये जो अब से जो है तो भगवान इनका चित्र तो महाराज की तपस्या ही चल रही है, देख सकते हैं पूरा। तो ये मतलब राज है उनका चित्र तो महाराज से, यहीं पे विराम देंगे। प्रैक्टिकल रेनन्सिएशन बेसिकली फीजेबल, प्रॉपर एक जगह पे युक्त वैराग्य का ट्रांसलेशन करें, फीजेबल रेजोल्यूशन, फीजेबल यानी कि जो मुमकिन हो, प्रैक्टिकल रिलेशन जो व्यावहारिक हो। यहीं पे विराम देंगे, किसी को प्रश्न नहीं पूछ सकते जी। नहीं, भगवान की परीक्षा माया की परीक्षा, हमने फर्क बताया था, भगवान माया परीक्षा बेसिकली माया कोई परीक्षा नहीं ले रही होती है, माया सिर्फ माया जो एक एजेंट होती है जो हमारे कर्म का निदान हमें दे रही होती है, हमें परीक्षा लग रही होती है, परीक्षा तो अभी हुई नहीं है, परीक्षा तो जब भगवान करेंगे तो पता चलेगा। अरे कमाल है आप भाई, 3 दिन पहले आप चोरी करके आए थे, वीडियो कैमरा में कैद हो गया, आज पुलिस आ गई, आप कह रहे माया परीक्षा ले रही है, अरे आप बेवकूफ, आपको चोरी करना नहीं आता, भुगतो अब आप माल है आप कह रहे। प्रभुपाद बोलते हैं थीफ शुड बी एक्सपर्ट थीफ ही शुड नेवर गेट कॉट, तब ठीक है। तो ये तो कहने का मतलब ये है, हम माई का परीक्षा क्या है उसमें, आपकी गलती है, हाँ समझ रहे, आप फंस गए उसमें, थोड़ा चीज आपको लग रहा है माया ने परीक्षा ले ली, परीक्षा तो भगवान भगवान परीक्षा भगवान लेते, तो हमारी बेवकूफी हमारे कर्मों का जो है हमें वो मिल रहा होता है सारा, जब भगवान परीक्षा ले रहे हैं वो कर्म नहीं की परीक्षा नहीं ले रहे, कर्म की परीक्षा तो कर्म ले लेगा अपने आप ही, वो तो जो आपने किया है वो ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेशन पे है सिस्टम, वो उसमें भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपने वो कर्म किया है तो अब उसका आपको सुख या दुख आपको भोगने को मिलेगा, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेशन पे डाला है उसको भगवान ने, भगवान का इंटरवेंशन जब वो भक्ति कर रहा है तब आते, उससे पहले नहीं आते। जो आदमी भक्ति नहीं कर रहा वो ऑटोमेशन ऑटो पायलट सिस्टम में चल रहा होता, जैसे कृष्ण बुक में जो है जब कृष्ण जो आर्गुमेंट देते हैं भाई किसी ने अच्छा किया है तो मिल जाएगा, बुरा किया तो उसको मिल जाएगा, वो भगवान का सके बीच बात सही है एक तरफ से, वो कर्म मीमांसा वहां तक सही है, ये कर्मी के लिए लागू होता है, भक्त के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि उस वक्त भगवान जिम्मेदारी लेते कि नहीं मैं इसका जो है कर्म एडजस्ट करूंगा इस टाइम, इसकी भक्ति को मद्देनजर रखते हुए जितना उतना, यही है तमाम प्रबंधन का मतलब है, जितना वो सरेंडर करेगा उतना ही कर्म एडजस्ट करूंगा, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा करेगा सारा कर दूंगा, पागल बनाने के लिए मैं ही मिला हूं, ऐसा नहीं है। हाँ समझ रहे ठीक है, जी
जी जी
नंदन भाई, दोनों ही केसेस में अगर हम देखें ऑपुलेंस में डिस्कस में माया के द्वारा कि उस समय नहीं पता लग रहा, कुछ समय बाद जाके पता लगेगा, जैसे जीवन के मृत्यु तक अगर उसका ऐश्वर्य रहा तब उसको कह सकते कृष्ण द्वारा दिया गया
जी।
और उस व्यक्ति को मदद करेगा नहीं करेगा आने वाले वक्त ही बताएगा
जी, ये भी बात ठीक है।
उस समय जब उसको ऐश्वर्य मिल रहा है या जब उसको तो उस समय नहीं कोई तरीका पता लगाने का
नहीं, बात ये नहीं है, बात ये जो बहुत अच्छा प्रश्न प्रभु जी का, प्रभु जी का प्रश्न समझ आया, प्रभु जी ये पूछना चाह रहे हैं कि उस भक्त को कैसे पता चलेगा कि भगवान का अच्छे द्वार दिया गया है कि माया का द्वार दिया गया। तो अब यहाँ जो है यही है ना आपका प्रश्न कि भाई उसको कैसे पता चलेगा, उसको पता चल जाए तो वो इत्मीनान कर ले, चलो भगवान के द्वारा आया आ गया, और माया के द्वारा तो भैया बहुत चौकन्ना हो जाए। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पर यही वजह है कि भक्त को नहीं पता होता, ये तीसरे व्यक्ति के नजरिए से ये जो स्टेटमेंट प्रभुपाद ने दिया है ये बाहर वाला व्यक्ति देख के समझ सकता है ये माया के द्वारा दिया गया था और ये भगवान के द्वारा दिया गया था। उस वक्त वो भक्त चाहे माया के द्वारा दिया गया है चाहे भगवान के द्वारा गया है वो वैसे ही काम करेगा, नहीं तो वो बात वही हो गई ना फिर तो भक्त तो, भक्त का मतलब क्या आई तो क्या है प्रति आता तो उसको तो ब्रेक लग जाएगा, माया का द्वारा दिया गया तो ओवर ड्राइव पर डाल देगा अपने आप को, और भक्त भगवान के द्वारा दिया तो भले भले होगी उसकी तो छोड़ देगा माला पूजा को, ठीक है भगवान के द्वारा मिली है मेरे को, ठीक है प्रसाद खा रहो मेरे को खाने दो, आई एम इन समाधि डोंट डिस्टर्ब मी, है ना, फिर तो ये हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है। ये इसीलिए उस भक्त को नहीं पता चलेगा कि भगवान के द्वारा दिया गया है कि माया के द्वारा दिया गया है। वो भक्त अच्छा उस अच्छा सबसे बड़ी बात तो ये है उसको इसकी परवाह भी नहीं है कि माया के द्वारा दिया गया कि भक्त के द्वारा दिया गया है, भगवान के द्वारा दिया गया, उसको दुख आया चाहे माया के द्वारा है भगवान के द्वारा है, वो दोनों केस में देखता है आपनों कर्म मुझे आया समझ, मैं मेरा भैया मेरे कर्म थे मैं देखता हूँ, और सुख आया है चाहे माया से आया है चाहे भगवान से आया वो यही देखेगा कि भगवान के द्वारा दिया गया है, भगवान की सेवा में लगानी, बस बात खत्म। हाँ समझ रहे, और उसके चाहे इधर से आ रहा है चाहे इधर से आ रहा है उसका एटीट्यूड वही है, वही सेम चीज जो कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर, वो इसी वजह से उसका एटीट्यूड तो वो आदमी फिर भक्त थोड़ी दोगला आदमी है, माया देती तो अलग चाल चलता है भगवान देते तो अलग चाल चलते हैं, ये स्टैंडर्ड ही नहीं उसका कोई। हाँ समझ रहे, ये नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बाहर वाले व्यक्ति को देखने के लिए जो जिसके लिए वो भक्त एक उदाहरण के रूप में चल रहे हैं, ये जो जितने भी एग्जांपल है सारे उदाहरण साधक भक्तों के लिए कि देखिए उसको पैसा मिला उसको ऐश्वर्य मिला तो उसने क्या किया, उसको थोड़ी पता था कि चित्र के दोबारा को थोड़ी पता था मेरा नाम भागवतम में आने वाला है, तो बहुत इमेज कॉन्शियस हो जाते पहले ही, थोड़ी पता था ध्रुव महाराज को मेरा नाम आने वाला है भागवतम और ये सब, हाँ समझ रहे हैं, अजामिल को थोड़ी बताता है किसी लोगों को पता थोड़ी है, तो अब हम उनको केस स्टडीज के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और कर भी इसी ले रहे हैं क्योंकि उनका जो व्यवहार था उसमें कभी दोगला बंद नहीं था, जब वो भौतिक जब उनके पास भौतिक बलि महाराज जब उनके पास भौतिक ऐश्वर्य था तभी वो वैसे ही थे, जब उन्हें भगवान ऐश्वर्य तभी वो वैसे ही थे, सुदामा विप्र जब वो गरीबी में था तभी वो वैसे ही था, जब भगवान ने महल बना के दे दिया तभी वो वैसे ही था, ये उसे क्या पता कि उसको क्यों मिल गया, वो पहले दुखी क्या होता उसको ये भी नहीं पता, वो तो ये लेकर चल रहा है कि हाँ ठीक है मेरे कर्म ऐसे थे, उसका तो ये चीज है।
एक प्रश्न वैराग्य को भगवान की सेवा में लगाने इसको कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि वैराग्य किस प्रकार भगवान,
यही सेम चीज है, जैसे मान लीजिए जो मतलब वैराग्य जिसके अंदर ऐसा है, वैराग्य का मतलब क्या है, वैराग्य के दो मतलब है एक्चुअली यहाँ पर जो वैराग्य का जो मतलब हम चर्चा कर रहे थे वो कई बार त्याग को सिर्फ भौतिक त्याग को जो है वैराग्य से कंफ्यूज कर लिया जाता है, वैराग्य का मतलब होता है विशेष राग, और यहाँ वैराग्य वही वही का मतलब विदाउट राग, तो यानी कि किस विदाउट अटैचमेंट, तो वो चीज जो के बार लोग कहते हैं कि कोई अटैचमेंट नहीं, वो किससे अटैचमेंट नहीं है, यानी कि आपके पास कोई चीज है चीज से अटैचमेंट नहीं है, चीज आपके पास हो सकती है, और हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या होता है अगर चीज से अटैचमेंट नहीं उस चीज का फायदा क्या, फेंक दो उसको, हाँ समझ रहे ना, तो वो चीज चुभती है, फिर जो चीज से अटैचमेंट नहीं है या कोई बता दे रखनी नहीं है और वो चीज आपके पास रहे भी क्यों रही है भाई, हाँ समझ रहे, और ऐसा आपको किसी ने बोल दिया, अगर प्रैक्टिकली एग्जांपल देते हैं आपको किसी ने बोल दिया, आपने जैसे उदाहरण पूछा कि भाई आपने बच्चों से आसक्ति नहीं रखनी, अच्छा नहीं रखनी तो मैं पढ़ाऊं लिखाऊं क्यों, इस पर क्यों पैसा खर्चूं मैं, मेरा दिमाग खराब है क्या, है ना, जब इससे आसक्ति रखनी नहीं है मैंने तो मैं क्यों घटाऊं इसको फिर, है ना, बीवी बच्चों से आते तो बीवी को भी मेंटेन करने की क्या जरूरत है, फिर जा भैया तू जब जहां पहले पहले रहती थी वहां जा, अब बात समझ लो, तो वो फिर आपका अटैचमेंट को डेवलप, आपको कोई डिटैचमेंट डेवलप नहीं हुआ, वो आपका अटैचमेंट ही है अभी। वो अटैचमेंट जो है विकृत रूप में निकल के आ रहा है। क्यों निकल के आ रहा है? क्योंकि आप जो कल तक जो है अटैचमेंट की वजह से जिसके साथ आप रह रहे थे, अब अटैचमेंट नहीं रखना ये, इसकी वजह से आप उस पर नहीं रह पा रहे, आपको चीज चुभ रही है, क्योंकि आपको वो जिम्मेदारी चुभ रही है। अभी वो जिम्मेदारी क्यों उठा रहे थे? कंडीशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज आप वो जिम्मेदारी उठा रहे हो क्योंकि उससे आपको कुछ निचोड़ पा रहे हो, जब ही उठा रहे हो, नहीं तो नहीं उठाते। बिना कुछ मिले उठाओ तो जाने, इसे अटैचमेंट, ये डिटैचमेंट और ये वैराग्य, और ये हर चीज में। आज मेरे को कोई सामान मेंटेन करने के लिए दे दिया, मान लीजिए ये चीज दे दी हमको, ठीक है हमने मेंटेन करनी है, पर आपने इसका भोग नहीं करना। जैसे मान लीजिए हमारे मंदिर में प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सारे एग्जांपल प्रैक्टिकल है वैसे तो, एक दिमाग में आ रहा है, जैसे हमारे मंदिर में टेम्पल कमांडर डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे पूरा मंदिर का सारे ऐश्वर्य आते हैं, पर टेम्पल कमांडर क्या करते, कुछ नहीं लेते, ये वैसे ही रहते हैं जैसे रहते हैं। देखो नहीं तो जहर देवाद में रहन प्रभु देखे कोई बोलेगा कि कुछ लेते हैं, पूरा 50 किलो कभी नहीं है। और मंदिर में जो है जितनी मिठाइयां आती है, दिन में 50 किलो मिठाई आती है, तो इनके हाथ से होते ही गुजरती है वो, तो इसका क्या मतलब है? आपने नहीं लेना। अब ये बोले कि जब मैं खा नहीं सकता तो मैं मेंटेन क्यों करूं, मैं क्यों फ्रिज में डालूं, इसको पड़े रहते तो जहां पड़े रहते, समझ रहे बात को? मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं क्यों इसको ठिकाने लगाऊं, ना मैं लेके आया ना मैं खा सकता हूं, तो फिर क्यों मतलब? तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, यू विल हैव टू मेंटेन इट विदाउट एंजॉयिंग इट, ये प्रैक्टिकल। क्यों? क्योंकि ये भगवान विष्णु का काम भी ऐसी है, ही मेंटेन्स विदाउट लाइक यू नो लाइक एक्चुअली, बट इट इज हिज, ऑल्दो ही इज अ एंजॉयर, बट वो इसलिए मेंटेन नहीं करते कि मेरे को एंजॉय करना है, ही इज बाय डिफॉल्ट एंजॉयर, वो अलग बात है। ये दोनों चीजों का अलग अलग देखना पड़ेगा। भगवान मेंटेनर है इसलिए नहीं है मेंटेन करते हैं कि आज मेंटेन, जैसे वही होता है ना मुर्गा बड़ा होने तो मैं काटूंगा, अभी अंडा देगा मेरे को, तो इसलिए भगवान जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, मुर्गी को दाना डाल रहे हैं, भगवान दाना डाल रहे हैं, मुर्गी को दाना डालना उनका मतलब ठीक है, वो दाना डालते हैं, वो उनका स्वभाव है, समझ रहे हैं? और अंडे पे जो भगवान का अधिकार है वो अलग चीज है। तो जो युक्त वैराग्य का सिस्टम है ऐसे, इसलिए ईशावास्यम इदम सर्वम इज द एग्जैक्ट परफेक्ट वो मतलब रेफरेंस फॉर युक्त वैराग्य शास्त्र। ईशोपनिषद का श्लोक है, तेन तक्तेन भुंजता मां कृता कस्य, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ युक्त वैराग्य है। ये अंडरस्टैंडिंग है। कर्मफल और माया के डर एक ही बात। जी हाँ, तो माया दे रही है उसको आपको, कर्म कहां किया आपने? भौतिक माया की जगत में ही तो किया, आध्यात्मिक जगत में कर्म का नतीजा थोड़ी। नहीं, ऑपुलेंस ऐश्वर्य, जिस ऐश्वर्य से जो है वो उसका पतन हो जाए, वो माया का दिया गया था, बाद में वो नहीं समझ सकता, दूसरा बंदा समझ सकता, और वो ऐश्वर्य से जो है भक्ति में आगे बढ़ गया, और तो भगवान के द्वारा दिया गया था, मदद भेजी थी भगवान ने उसके लिए। ऑब्वियसली भगवान के द्वारा लिया गया, भक्त का टेस्ट माया क्यों लेगी अलग से? अगर माया कोई माया एक औजार बन सकती है, एक इंप्लीमेंट बन सकती है, एक जरिया बन सकती है। अच्छा, माया ने मान लो टेस्ट ले भी लिया तो क्या हो जाएगा? माया क्या इनाम दे देगी उसको? हाँ, समझ रहे हैं? टेस्ट लेने का मतलब क्या? टेस्ट में पास हो गया तो क्या मिला मेरे को? जब हम टेस्ट में पास हो जाते हैं तो ठीक है, कोई आपको अव्वल दर्जा मिल गया या आप अगले क्लास में चले गए, तो बात समझ आ रही। अब माया ने टेस्ट लिया तो माया क्या दे सकती है उसको? भगवान ने इस्तेमाल किया, देखे जरा, माया एजेंसी भगवान की शक्ति है, तो ठीक है तो उसको मिला, तो ये अंडरस्टैंडिंग टेस्ट भगवान के द्वारा लिया गया। जैसे चित्र के तुम महाराज, चित्र के तुम महाराज से तब क्या हुआ? थोड़ी सी गलती बस, इसलिए चित्र के तुम महाराज से क्या सीख सकते हैं? यही तो कि चाहे जितने भी उन्नत भक्त हो, अपना पब्लिक बिहेवियर जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, लोगों के सामने दूसरे भक्तों के समाज में कैसे बर्ताव करना है बहुत सावधान रहे। क्या गया था? एक मजाक ही तो किया था, इतना महंगा पड़ गया। हाँ, समझ रहे हैं? वज्राघात से मृत्यु ही, तब जाके भगवता हूं मैं, बताओ कैसे भगवता हूं? हाँ, सोचो। तो ये और वो भी यही चाह रहे थे कि ये भी बिल्कुल असुर की योनि, और क्या मतलब कैसे उनका आखिरी एक्शन निकला, कैसे असुर की योनि को मतलब मैं जब जब उनको मारा गया, दैट किलिंग
took away his reaction. That killing took away. So this is like this. So it's like very subtle.
प्रभुपाद ने परपट में इसमें बहुत जगह बताया कि भक्त जो है वैकुंठ में जाके भगवान की सेवा करना चाहता है, उसकी इच्छा होती है. और भी कई जगह प्रभुपाद बताते हैं. जो हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं उसमें वो भी बताते हैं कि मुझे नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किसी प्रकार के वरदान की कोई इच्छा नहीं है. आपका जो बाल गोपाल का रूप है वो मेरे हृदय
में.
तो फिर ये दोनों अलग अलग जगह है, तो इसमें से
दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही बात है. अलग अलग स्तर के भक्त के लिए अलग अलग स्तर के. अब आप दामोदर अष्टकम की अगर बात कर रहे हैं तो दामोदर अष्टकम जिसने लिखा है तो क्या है, नित्यमुक्त है? नहीं है नित्यमुक्त. अब बताइए, पर वो दामोदर अष्टकम गा के आप नित्यमुक्त बन सकते हैं, ये मजेदार बात है. नित्यमुक्त है वो तो पिछले जन्म में थे ना सत्यधान. अभी तो अभी है सत्यव्रत मुनि, पिछले जन्म में थे. अब अभी तो वैवस्वत मुनि वो है महाराज मनु. पिछले मनु महाराज के पिछले जन्म के प्रेयर है, तो हो जाते तो उसी जन्म में निकल नहीं जाते. फिर दोबारा इस जन्म में जन्म लिया, इस जन्म में जाके फिर भगवान ने जो उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया, एवं व्यवस्थित योगम मनु प्रथमा अव्य. हाँ समझे, तो इसका क्या मतलब है? तो ये यही है. उसके बाद सूर्यदेव और सूर्यदेव का मनु महाराज ऑल्सो डायरेक्टली गॉट. अलग जगह पे आता है मनु महाराज डायरेक्टली गॉट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कृष्ण. तो व्हाट इज दिस? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अलग अलग भक्त के हिसाब से अलग अलग चीज है. जो भक्त बहुत कमजोर हैं, दे शुड बी फर्स्ट विलिंग टू गो बैक होम, बैक टू गॉड इट. और वहां से जो है उनको ठीक है, उनको कोई ऐसी सेवा मिली है तो वो सेवा कर सकते हैं. नौसिखिए भक्त को जो है इतनी बड़ी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपका भक्ति नहीं चाहिए, आपका धाम नहीं चाहिए. भक्ति तो चाहिए, मतलब आपका धाम नहीं चाहिए और ये सब नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए. जितने है ना, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए. जितने चादर हो उतने फैलाए पैर. अभी हमारे लिए यही है कि हम यही मान के चले कि भगवान मेरे को जो है अपने अपने चरणों में स्थान दीजिए. उसका मतलब है भगवान के चरण जो है ना आध्यात्मिक जगत. ये पर ये जो प्रार्थना है वो जब उन्नत अवस्थाओं का भक्त है वो करता है, उसके मुंह से अच्छी लगती है कि मेरे को आपका कुछ भी नहीं चाहिए. हाँ समझ रहे, तो आप देखिए ना चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना में है ऐसे लाइन कि मुझे आपका धाम नहीं चाहिए. उन्होंने क्या बोला, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता. ये थोड़ी बोला ना गोलक्यम एव, वो भी नहीं चाहिए. तो जब चैतन्य महाप्रभु नहीं कर रहे ऐसी प्रार्थना, आप क्यों कर रहे हो अभी? अभी पहले आप आओ तो सही उस स्तर पे, वो फिर आप बोलो वो बात, वो आपके मुंह से अच्छी लगे. और फिर अगर आपको अभी क्या है ना, अभी जो बोली हुई बात सच निकल आई तो आप क्या करोगे? ये मान के चलो ना, जब आप सच में आपकी वैसी औकात है, ऐसी हैसियत है कि जब आपको धाम नहीं भी मिलता, भगवान अपनी सेवा में रखें तो भी आपका काम चल जाएगा, तो बोलो बात अच्छी समझ आ रही है. अभी ना बोलो हमारे सेहत के लिए अच्छा है.
जैसे आपने बताया कि डिटर्मिनेशन एक खुद की रिस्पांसिबिलिटी है, तो ये डिटर्मिनेशन कल्टीवेट कैसे, मतलब
इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. प्रभुपाद ने भी बताया, मैं बताना भूल गया था. इन द एसोसिएशन भक्तों के संग भक्तों के साथ रह के, भक्तों को ऑब्जर्व करके, भक्तों से सीख के, भक्तों से सुन के, भक्तों की सेवा करके. चार पांच तरीके, मतलब है तो दो ही कैटेगरीज, वन टू हियर एंड टू सर्व. पर उसके अंदर साथ में रहना इज सर्विस ऑल्सो, साथ में रहना टू ऑब्जर्व, दैट इज सर्विस ऑल्सो. तो ये उनसे सीख के ऐसे तभी डिटर्मिनेशन आती, नहीं तो भक्ति के करने पर. हो सकता है वो आदमी, देखिए जो डिटर्मिनेशन भक्ति में चाहिए होती है और जो डिटर्मिनेशन बाहर होती है, हो सकता है कोई आदमी बाहर बहुत डिटरमाइंड हो पर भक्ति में आते उसकी टाइम बोल जाती. हाँ सर, तो किसका मतलब क्या है, उसको भक्ति में आके भक्तों के साथ संग करके जो है अपने डिटर्मिनेशन को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, जो बाहर उसकी बहुत चलती है. समझ रहे, बाहर बहुत दिमाग चलता है जी मेरा, बाहर तो लोग मेरी उसकी मैनेजमेंट की वाह वाह करते, तारीफ करते, यहां मेरा फुस हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि भक्तों के संग में इसको सीखना पड़ेगा आपको दोबारा. बाहर वाला तरीका यहां नहीं चलेगा, औंधे मुंह गिरेगा वो. हाँ समझ रहे बात को, तो बाहर हो सकता है बहुत डिटर्मिनेशन हो पर भक्तों के साथ रह के जो है डिटर्मिनेशन को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, तो भक्ति में काम आएगी वो डिटर्मिनेशन. ये डिफरेंस है, बिग डिफरेंस एक्चुअली. कई बार कई लोग जो मटेरियली बहुत बड़े अचीवर्स होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, भक्ति में आकर उनकी दाली निकल रही होती है, बेचारे बड़े परेशान होते हैं. और बाहर जो फॉर्मूला मेरा बाहर चलता है, चलता नहीं मेरा. इसलिए चलता है कि उस फॉर्मूले को आपने यहां पे आके जो है रिस्ट्रक्चर नहीं किया भक्तों के संग में, जब चलेगा आपका वो फॉर्मूला, नहीं तो नहीं चलेगा, समझ रहे हैं? वो फॉर्मूला एज इट इज यहां रेप्लीकेट करोगे तो काम नहीं चलेगा वहां पर, एनवायरमेंट अलग है ना, समझ रहे हैं? विंडोज का प्रोग्राम लोटस में नहीं चलेगा, सेम चीज, उसके लिए आपको जो उसका लोटस का वर्जन निकालना पड़ेगा तब चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है ना, एनवायरमेंट अलग है, वही सेम चीज है, ठीक है? नहीं, पीछे से कुछ सवाल जी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, हाँ जी, बंद हो गया, कोई बात नहीं, बोली सुनाई दे रहे, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इन भक्ति का मतलब बेसिकली टू डेवलप द 26 क्वालिटीज ऑफ द डिवोटी, प्राइमरली थ्री थिंग्स लाइक सेंसिटिविटी, ओबीडियंस टू द स्पिरिचुअल मास्टर, एंड
तीसरा होता
डिसिप्लिन, थैंक यू, ये तीन चीज, दीज आर प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकली केस टू केस बेसिस पे, कि मतलब हम लोग जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी आश्रम में है, जिस भी वर्ण में है, उसके नियमों को पालन करें विद अ बिगर व्यू ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, बेसिकली दैट इज युक्त वैराग्य, जो चीज भगवान की सेवा में लग सकती है मेरे को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज नहीं लग सकती या मुझे नहीं लगने देगी उसे ठुकराने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसे वैराग्य, मेरा ना कोई स्पेसिफिक, मेरा ना जोड़ने में जो स्पेसिफिक मन है, ना मेरा तोड़ने में स्पेसिफिक मन है, हाँ समझ रहे, ये प्रिंसिपल। अब प्रैक्टिकली कैसा, हर चीज में लागू हो सकती है, एकेडमिक्स में लागू हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में लागू हो सकती है, सोशल इंटरेक्शन में लागू हो सकती है, पर्सनल लाइफ में लागू हो सकती है, बस ताजी लागू हो सकती है, ठीक है? बस 9:30 बज गए, बहुत समय हो गया, आपको प्रश्न तो बाद में पूछे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अस्थित भक्त वृंद की, पिताई गोष्ठनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल, शिल प्रभुपाद की जय हो।